ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने, अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने तथा 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। कल संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के सेंट्रल कक्ष में आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय संविधान को जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज बताया, जिसके माध्यम से देश सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाले किसी भी आतंकी संगठन को मुंहतोड़ जवाब देने के भारत के संकल्प पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश परिवर्तन की महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले वरिष्ठ नागरिकों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वे अपने घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तमिलनाडु के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति आज रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के संकाय और छात्र अधिकारियों को संबोधित करेंगी। गुरुवार को राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन उद्गम मंडलम में आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और नीलगिरी जिले के आदिवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों से बातचीत करेंगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार का संकल्प भारत को 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है और इस अभियान में सहकारिता मंत्रालय अहम भूमिका निभाएगा। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव की कल घोषणा की। 3 सीटें आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से 1-1 सीट है। उपचुनाव के लिए मतदान और मतगणना 20 दिसंबर को होगी। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ से दोनों देशों के लिए गंभीर आर्थिक परिणामों की चेतावनी दी और मैक्सिको तथा कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की उनकी धमकी के बाद संभावित जवाबी कार्रवाई की बात कही। ट्रंप को लिखे एक पत्र में शिनबाम ने कहा कि एक टैरिफ के बाद दूसरा टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि टैरिफ से दोनों देशों में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी और नौकरियां जाएंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। देश के कच्चे तेल के आयात का 35% से अधिक हिस्सा रूस से आता है। नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फिपी ऑयल एंड गैस पुरस्कार समारोह में श्री पुरी ने कहा कि फरवरी 2022 में रूस से तेल आयात कुल कच्चे तेल आयात का मात्र 0.2% था, जो लगातार बढ़ते हुए शीर्ष पर बना हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार करने और उनको जमानत देने से इनकार करने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथियों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने हाल ही में हुई मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच शुरू की। गृह मंत्रालय द्वारा अपराधों की गंभीरता को देखते हुए मामले सौंपने का फैसला किए जाने के बाद एनआईए ने इन मामलों को फिर से दर्ज किया। 13 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामले फिर से दर्ज किए गए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत की शुरुआत करेंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना है। इस दौरान वे बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का उद्घाटन करेंगी। बाल विवाह की घटनाओं पर जागरूकता बढ़ाने के अभियान का समर्थन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।